शांति। आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप यूपी की धरनी पर कानपुर के पास स्थित एक छोटे से गांव से निकले ईश्वर के अनमोल रतन है। आपका ये सौभाग्य रहा बाल्यकाल से ही घर में ईश्वरीय वातावरण रहा, क्योंकि घर में गीता पाठशाला खुल गई और उसी ईश्वरीय वातावरण में रहकर लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई पढ़ते हुए आप बड़े हुए और 1971 में पहली बार मधुबन धरनी पर कदम रखा और फिर 1972 में दूसरी बार, लेकिन वो कदम स्थायी कदम, परमानेंट कदम, कि जिसके बाद घर नहीं लौटे। तो 1972 से इस धरनी पर मधुबन कैंपस में रहते हुए आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इन सेवाओं में आपको बहुत कुछ हासिल हुआ है। शुरू के कुछ वर्षों में तो आपने विविध सेवाएं की, लेकिन उसके बाद 1976 में आपको एक विशेष प्रकार की सेवा मिली, जिस कारण से आप यज्ञ में किस नाम से प्रसिद्ध हैं। मुरली वाले राजू भाई। मुरलियां जो सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी करना और सभी सेवा केंद्रों पर पोस्ट करना, और उस सेवा को आज दिन तक आप बखूबी निभा रहे हैं। इसके अलावा पत्र पुष्प निकालना, अव्यक्त मुरलियों के आधार से छोटी छोटी पुस्तिकाओं का संकलन कि जिससे पूरा ब्राह्मण परिवार लाभान्वित होता रहता है, और चूंकि सारा ही समय मुरलियों के साथ ही आपका टाइम बीतता है और इसलिए उसका लाभ और भी सबको मिले, तो वर्तमान में मीडिया की सहायता से अमूल्य रतन नाम का जो टॉक शो आपने किया है मुरलियों पर, उसके भी लगभग 1300 एपिसोड्स पूरे किए हैं और शायद आप सभी उसका लाभ भी उठाते होंगे। इतना ही नहीं, आप हमारा जो ग्रामीण विकास प्रभाग है उसके वाइस चेयरपर्सन है, जिसके अंतर्गत शाश्वत यौगिक खेती की अवधारणा सबको देकर खेती के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, मधुबन के अंदर फोटोकॉपी डिपार्टमेंट, स्टेशनरी आदि आदि भी आपके ही निर्देशन में चलता है। यहाँ तक कि दादियों के पास जो पत्र आते हैं और समय समय पर जो हमारे विशेष दिन आते हैं आजकल, मम्मा डे, दीदी डे, दादी डे, तो वो पॉइंट्स निकालकर सर्कुलर सभी सेवा केंद्रों पर भेजना, ये मुख्य रूप से आपकी सेवाएं हैं। और चूंकि इतनी सारी मुरलियां दिलो दिमाग में भरी हुई है, उसी को आधार बनाकर बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान भी दिया है, ज्ञान योग की बहुत अच्छी पकड़ है, तो पूरे भारत तो क्या विश्व भर में भ्रमण करते हुए भट्टियां कराते रहते हैं। आज हमारे बीच में है, बहुत सुंदर विषय पर प्रकाश डालेंगे, लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति कैसे बनाए। तो सुनते हैं भ्राता जी से, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। बाबा के इस चरित्र भूमि में, तपस्या भूमि में आप सभी योग की गहरी अनुभूतियां स्वतः और सहज योग का अनुभव तो कर ही रहे हैं, हो रहा है ना? जिधर जाएं बाबा के सिवाय और क्या है, चार धाम में जाते हैं, बाबा यहाँ बैठते थे, यहाँ बच्चों से मिलते थे, यहाँ सोते थे, यहाँ सैर करते थे, यहाँ मुरली सुनाते थे, यहाँ खेलते थे, बहुत सारे बाबा के यादगार स्थान हैं। तो हर एक बाबा के बच्चे की दिल होती है मधुबन की पांडव भवन की भट्टी करें। तो आप सभी को ये बहुत सुंदर गोल्डन चांस मिला है और इसका पूरा पूरा लाभ भी जरूर ले रहे होंगे। योग की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं, है तो एक ही चीज, बाबा को याद करना है। कभी उसको ज्वालामुखी योग कह देते हैं, कभी बीज रूप कह देते हैं, कभी लाइट हाउस माइट हाउस कहते हैं, है तो बाबा की याद ही, और कुछ तो दूसरा तो नहीं है। लेकिन उसका एक ही साधन है, लाइट हाउस जब हम कहते हैं तो लाइट हाउस माना ज्ञान स्वरूप स्थिति। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान एक लाइट है, ज्ञान एक प्रकाश है, और बाबा ने योग के लिए उसका फाउंडेशन ज्ञान बताया है। ज्ञान के बिना योग यथार्थ नहीं होता, याद तो रहती है। कई भोले सच्चे बच्चे होते हैं, बाबा 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 कहते हैं और बाबा बाबा कहते भी पार हो जाते हैं, उनको कोई लाइट हाउस माइट हाउस बनने की जरूरत नहीं पड़ती, सच्ची दिल है, प्यार से बाबा कहते हैं। लेकिन एक यथार्थ विधि पूर्वक जिसमें स्वयं की स्मृति है, घर की स्मृति है, अपने स्वधर्म की स्मृति है, अपने पिता की परमात्मा की स्मृति है। तो जब हम ज्ञान स्वरूप स्थिति में बैठते हैं, पहले शुरुआत ही हम अगर इस तरह से करते हैं कि हम एक चमकती हुई मणि इस भ्रकुटी आसन पर निवास करती हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, इस शरीर से भिन्न एक चमकता हुआ सितारा हूँ, तो पहला अनुभव ये होने लगता है जैसे शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। शरीर का भान नहीं रहता, बहुत हल्कापन आ जाता है। आत्मा ऐसे अनुभव करती है जैसे मैं उड़ रही हूँ, है शरीर में ही लेकिन मन और बुद्धि संसार से, इस प्रकृति के पांच तत्वों से पार चली जाती है, तो परमधाम घर की अनुभूति होने लगती है। उसको कहते हैं ये लाइट हाउस बन गया। और वो लाइट हाउस जैसे आज कितनी शिप्स को, जो समुद्र में जहाज चलते हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए हर एक बंदरगाह पर, पोर्ट पर एक बड़ा लाइट हाउस होता है, देखा होगा। और वो लाइट हाउस में एक लाइट चारों तरफ ऐसे घूमती रहती है, बहुत तेज लाइट घूमती है, बहुत दूर दूर तक, क्योंकि सागर में जो सिप आ रहा है उसको किधर जाना है, किधर मोड़ना है, इतने बड़े सागर में कहीं कुछ दिखाई तो देता ही नहीं है, तो इसलिए वो लाइट हाउस उन्हें रास्ता दिखाता है कि इधर आ जाओ, इस साइड में आ जाओ। तो बाबा भी अपने बच्चों को कहते हैं ऐसी लाइट हाउस की स्थिति बनाओ, इतनी पावरफुल माइट हाउस की स्थिति बनाओ जो आपकी किरणें अनेक आत्माओं को भटकने से छुड़ा दें। भटक रही हैं बेचारों को, न खुद का पता है, न खुदा का पता है, न घर का पता है। ज्ञान जो है ना, गोल गोल कर दिया गया शास्त्रों में, और उसके कारण आत्मा ही परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही भगवान है, कुछ भी यथार्थ परिचय नहीं रहा। अभी ज्ञान बाबा ने दिया, लाइट दे दी, और जब उस लाइट स्वरूप में हम स्थित होते हैं तो हम भी ठोकर खाने से बच जाते हैं। ज्ञानी आत्मा दुख और धोखे से बच जाती, वो ठोकर नहीं खाती। अगर ज्ञान मिलने के बाद भी कहीं धक्के लग रहे हैं, भटक रहे हैं, ठोकर लग रही है, तो उसका मतलब है वो ज्ञान को यथार्थ समझा नहीं है, उसका स्वरूप नहीं बना है। ज्ञानी तो आत्मा इस संसार में रहते हुए, हर कर्म करते हुए सभी बातों से न्यारी रहती है, कहीं भी वो लिप्त नहीं हो सकती, क्यों? ज्ञान कहता है, ज्ञान माना समझ, और वो समझ कहती है बच्चे ये सृष्टि एक नाटकशाला है, इस नाटक के अंदर तुम आत्माएं खेल खेलने के लिए आई हो, तुमने शरीर रूपी चोला धारण किया है, पार्ट बजा रही हो एक बहुत बड़े मांडवे के बीच में, सृष्टि रंगमंच है और इस रंगमंच की बत्तियां सूर्य चांद तारागण हैं, आप एक चैतन्य शक्ति हो, आत्मा हो, आत्मा केवल इसी एक पृथ्वी पर, ग्रह पर कहें, पार्ट बजाती है, और कहीं कोई दुनिया नहीं है। कितना भी साइंसदान अरबों रुपया खरबों रुपया खर्च कर लें, चाहे मंगल पर चले जाएं, चाहे शुक्र पर चले जाएं, लेकिन क्या लेके आएंगे? पत्थर ही ले आएंगे, मिट्टी धूल ले आएंगे, कहीं भी मानव सृष्टि नहीं है। ये बहुत बड़ा रहस्य रचयिता ने अपनी रचना का बताया है, और बड़े सरल शब्दों में बताया है। अभी मैं अमेरिका के टूर पर था, मुझे कहा नासा चलो, इस नासा से यहाँ से ही सब चांद पर गए, मंगल पर जाते हैं, यहाँ से ही सारे रॉकेट छोड़े जाते हैं, तो मेरे को दिखाने के लिए ले गए। तो चांद का जो दृश्य दिखाया उन्होंने, मॉडल बना के रखे हैं सब, वो जब गए स्पेस में कैसे उतरते हैं, कैसे वहाँ स्नान करते, कैसे खाते हैं, कोई धरनी नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में लटके हुए हैं, तो वो सारा दृश्य देखा तो हमने कहा देखो बाबा हमें कहता है तुम बच्चे इस स्पेस से भी इनसे भी ऊपर चले जाते हो, और जब बुद्धि से हम ऊपर चले जाते हैं तो इस संसार की आकर्षण नहीं रहती। वो भी जब ऊपर गए स्पेस में तो धरणी की आकर्षण नहीं थी, बहुत हल्के हो गए, लाइट हो गए, कोई प्रकार का शरीर का बोझ ही नहीं रहा। तो पूरा वीडियो बना करके सब कई घंटों तक दिखाते, मैं तो थोड़ा देर देखा, हमने कहा ये अभी क्या हमको करना है, चलो यहाँ से। लेकिन फिर भी देखा कैसे राकेट छोड़ते हैं, फिर राकेट ऊपर से जब आते हैं तो कैसे उनको सागर में गिराते हैं या प्लेन में लेते हैं, बहुत कुछ साइंस की माया है, साइंस बहुत विस्तार को पा गई है। अब बाबा ने हम सबके पास साइलेंस की शक्ति दी है, और साइलेंस की शक्ति से बुद्धि से हम उड़ते हैं, ये साकार जगत को छोड़ते हैं, पांच तत्वों की आकर्षण से परे हो जाते हैं। वो तो भी इसी मन्ने पर आ जाते हैं, मांडवे पर आते हैं, वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाते, और हम तो इस सूर्य चांद के भी पार चले जाते हैं। तो जब वो ऊंची स्थिति बनती है, जब वो हाउस की तरह लाइट हाउस बन जाती, पावरफुल स्थिति, ज्ञान स्वरूप और योग युक्त स्थिति बन जाती है, तो माइट स्वरूप हो जाती है। फिर खुद को भी रोशनी मिलती है, खुद भी रोशनी में रहते हैं, और हमारी शक्तियां, हमारा जो योग का बल है, वो अनेक आत्माओं को भटकने से बचाता है, लाइट हाउस की तरह रोशनी देता है। कितनी आत्माएं संसार में न स्वयं को जानती हैं, न घर को जानती हैं, न स्वधर्म को जानती हैं, कहाँ कहाँ भटक गई हैं, उन सब को हम सब का फर्ज बनता है। अगर हम उस स्वरूप में पहुँच गए हैं, हमने पहचाना है बाबा को, हमने बाबा से उस शक्तियाँ प्राप्त की हैं, हमारा योग अगर यथार्थ है, कनेक्शन जुटा हुआ है, तो ऐसा कुछ समय हम पावरफुल योग करें, इतनी एकाग्रता आवश्यकता है, एकाग्रता की। और एकाग्रता के लिए बाबा ने एक बार कहा था कि इस पावरफुल योग के लिए चार प्रकार की एकाग्रता चाहिए। एक तो पहले शरीर एकाग्र चाहिए, ऐसे स्थान पर बैठो जो शरीर की हलचल शांत हो जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे शरीर को हमने यहाँ पर बिठा दिया एक आसन पर, एकाग्र कर लिया, मूर्ति की तरह बैठ गए। और फिर अपनी तीन चीजें हैं, एक है संकल्प शक्ति, दूसरी है बुद्धि की शक्ति, तीसरी है भावना की शक्ति। मन, बुद्धि और दिल, इन तीनों को एकाग्र कर लें, भावनाएं भी भटकनी नहीं चाहिए, वो भी एकाग्र हो जाए, संकल्प भी एकाग्र हो जाए, एक बाबा के सिवाय और कहीं न जाए। ध्यान ये देना, कई लोग समझते हैं योग माना, पावरफुल योग माना, संकल्प ही नहीं चलेंगे, लेकिन संकल्प के बिना तो कोई अनुभव नहीं होंगे, अनुभव का आधार ही संकल्प है। हाँ, जो बहुत गति है जो संकल्पों की, जो भटक रहा है, फास्ट जा रहा है, उसकी सीमित हो जाती है, उसका कंट्रोल आ जाता है, जो सोचना है वही सोचते हैं। अनुभव के संकल्प हैं, अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, तो संकल्प आया और उस स्वरूप में स्थित हो गया, और उसी स्वरूप में स्थित होते ही बाबा की शक्तियाँ, बाबा की किरणें जैसे अनुभव होने लगी, और वो किरणें केवल यहाँ नहीं आई, वो यहाँ से चारों तरफ फैलने लगी। जैसे एक स्वच्छ पवित्र बहुत साफ स्वच्छ कांच हो, जिसके ऊपर कोई धूल मिट्टी ना हो, और सवेरे सवेरे जब सूर्य की किरणें निकली उस कांच पर आई, तो कांच ने अपने तक नहीं रखा, कांच ने रिफ्लेक्ट कर दिया उसको, और वो धीरे धीरे इतनी शक्तिशाली बनती गई किरणें, कि अगर बहुत देर तक किसी स्थान पर एकाग्र हो गई तो वहाँ पर अग्नि पैदा हो जाती है। आज सोलार क्या है, कोई भी चीज़ को अगर हम एनर्जी बनाना चाहते हैं, शक्ति बनाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले एकाग्रता है। तो जितना मन और बुद्धि एकाग्र हो जाता है, एकाग्रता के साथ साथ जितना स्वच्छ होता जाता है, जैसे बहते हुए पानी को अगर एक जगह पर इकट्ठा कर लें, एकाग्र कर लें, तो धीरे धीरे वो स्थिर हो जाता है। पहले स्थिर होता है, और जब स्थिर होता है तो जो सामने से उसमें कुछ कण मिट्टी धूल बह करके आती है वो नीचे जमीन पर बैठ जाती है, और जब बैठ जाती है कोई बातें इधर उधर की शांत हो जाएंगी तो पानी कितना स्वच्छ हो जाता है, और स्वच्छ होने के बाद उसमें स्पष्टता आती है। कोई भी चीज अगर उसके अंदर पड़ी है, आपने डाल दी है, आप 50 फुट 100 फुट कितने भी गहरे पानी में, अगर स्वच्छता है, एकाग्रता है, स्थिरता है, तो बहुत स्पष्ट रूप में उस चीज को हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हमने कई बार स्थूल में भी ये चीजें अनुभव की हैं। एक बार मैं एक सागर पर गया, फिजी में था, फिजी, मेरे को कहने लगे सागर की सैर करा के आते हैं। हमने कहा भाई मुझे तैरना नहीं आता है। कहते तैरने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ चलो, आपको सागर की सैर कराएंगे। सागर इतना स्थिर था, इतना शांत था, तो उसके ऊपर एक कांच वाली नाव में हमें ले गए बिठा करके, बहुत दूर तक ले गए, कई किलोमीटर। और जब उस नाव में हम गए तो कांच से पूरी सागर की दुनिया, बहुत रंग बिरंगी मछलियां थी, बहुत कुछ संसार था, जो मैं समझता हूँ 500-1000 फुट गहरा होगा, वो भी ऐसे दिखाई देता था जैसे हमारे सामने ये घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कहने का मेरा भाव है कि जब बुद्धि बहुत क्लीन क्लियर स्वच्छ स्पष्ट हो जाती है तो मैं आत्मा जो हूं जैसी हूं, मेरा बाबा जो है जैसा है। कई बार बाबा की मुरलियों में आता है मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे कोटों में कोई में भी कोई ही पहचानता है, मेरे बच्चे भी यथार्थ नहीं पहचानते, अगर पहचान लें तो न्यौछावर हो जाएं, मैं हूं कौन, कितनी बड़ी शक्ति हूं। तो अगर हम सभी बाबा को जो है जैसा है, और बाबा के पहले मैं आत्मा जो हूं जैसी हूं, कितनी सूक्ष्म शक्ति हूं, कितनी एक एनर्जी हूं, कोई रूप नहीं है, एक लाइट है, एक शक्ति है, उस स्वरूप में जब हम स्थित हो जाते हैं तो अपने 84 जन्मों का भरा हुआ रिकॉर्ड सामने स्पष्ट आने लगता है, कैसे मैं आत्मा इस खेल में आई, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, जो बाबा ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार से आत्मा बिल्कुल स्पष्ट अपने आप को देखने लगती है, वो ज्ञान स्वरूप स्थिति लाइट हाउस बन जाती है। अब उसकी लाइट से कोई भी आत्मा सामने भी आए, हम मुख से कुछ उसको सुनाए ना सुनाए, लेकिन उसको कुछ न कुछ रोशनी प्राप्त होती है, उसके वाइब्रेशन मिलते हैं, वो कहता है आपसे मिल करके बड़ी शांति का अनुभव होता है, अपनेपन का अनुभव होता है, पता नहीं क्या है, कौन सा संबंध है, वो स्थिति बनानी है। तो हम सभी जितना ज्ञान स्वरूप बनते जाएंगे उतना हमारी बुद्धि का भटकना शांत हो जाएगा, और जब मन बुद्धि एकाग्र हो गई, स्थिर हो गई, कांच स्वच्छ हो गया, तो बाबा की याद में बैठ जाओ, बाबा की शक्तियां ऐसे आएंगी, कांच पर आएंगी, कांच कुछ नहीं कर रहा है, कांच सिर्फ अपने स्थान पर स्वच्छ है और एकाग्र है, और वो सूर्य की किरणें आई और वो चारों तरफ ऐसे फैल गई, वो अपना काम कर रही है, कहीं पर कीचड़ को सुखा देती है, कहीं पर अंधियारा है उसको रोशन कर देती है, कहीं अग्नि पैदा कर देती हैं, कहीं सोलार एनर्जी पैदा कर देती हैं, किरणें वही हैं, किरणें चारों तरफ से हैं, लेकिन एक कांच के द्वारा जब रिफ्लेक्ट हुई तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे ही जब हमारे पर बाबा की किरणें आती हैं, जब हम एकाग्र होकर के बैठते हैं, बहुत दिल से बाबा को याद करते हैं और उनके शक्तियों का अनुभव करते हैं, तो वो शक्तियां इस कांच के द्वारा रिफ्लेक्ट होती है, वो माइट हाउस की स्थिति बन जाती है, वो लाइट हाउस की स्थिति कई आत्माओं को समीप ले आती है, भटकने से छुड़ा देती है, खींच करके आ जाती हैं, उनको लगता है यहां से कोई वाइब्रेशन आ रहे हैं, यहाँ से कोई शक्ति मिल रही है, यहाँ बड़े अच्छे वाइब्रेशन है शांति के, पवित्रता के। कई स्थानों पर हमारे सेवा केंद्रों पर जहाँ रोज योग चलता है, भट्टियाँ चलती हैं, जहाँ पर कोई भी बाह्य मुक्ता का वातावरण नहीं, कोई कोई है सेंटर्स पर घरेलू वातावरण बना के रखते हैं, हंसना बहलना बाह्य मुक्ता, लेकिन कहीं कहीं हम जाते हैं देखते हैं उस स्थान का वातावरण योग से इतना चार्ज है जो कोई भी दूर वाला भी उस गली से भी क्रॉस करता है तो उसको लगता है यहाँ से बहुत कुछ किरणें आ रही हैं, शांति की, पवित्रता की, स्नेह की, सुख की। कैसे आती है? जितनी आत्माएं प्योर हैं, अंतर्मुखी हैं, एकाग्रचित हैं, वो किरणें उस स्थान से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, फैल रही हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आपके सभी सेवा स्थान, जिस स्थान पर आप रहते हैं, जहाँ क्लास करते हैं, सेंटर है या घर है, वो शांति कुंड होना चाहिए, वो लाइट हाउस का काम करना चाहिए। हर गुण की, हर शक्ति की लाइट उस स्थान से प्रवाहित होनी चाहिए, सभी आत्माएं उससे खींच करके आ जाएं। तो लाइट हाउस की स्थिति केवल योग में बैठने से नहीं आएगी, केवल याद में बैठ गए और हम कहें हम लाइट हाउस बन गए, माइट हाउस बन गए, और बाहर वही हंसी मजाक बाही मुक्ता अनेक प्रकार का चिंतन चर्चा पर चर्चा, तो लाइट हाउस की स्थिति नहीं है। जो लाइट हाउस कहलाते हैं ये आत्मा लाइट हाउस का काम कर रही है, माइट हाउस का काम कर रही है, वो सभी व्यर्थ और व्यक्त बातों से फ्री रहती है। कुछ भी हो रहा है, जब हम सब जानते हैं संसार एक नाटक है, नाटकशाला है, और इस आत्मा में हरेक का, हरेक आत्मा में अपना अपना रोल है, अपना अपना पार्ट है, एक के संस्कार दूसरे के संस्कार से मिलेंगे नहीं, और ये समय जो है वो कलयुग का अंतिम समय है, ज्ञान स्पष्ट है। और जब अंतिम समय है तो अंतिम समय में हर क्षेत्र के अंदर अति होगी, कोई भी क्षेत्र है क्यों क्या के प्रश्नों में अगर उलझ जाओगे तो जो हमारी एकाग्रता है वो खत्म हो जाएगी, हमारी प्रसन्नता गुम हो जाएगी। इसलिए सभी ध्यान देना, जब इस कलयुग की अंतिम चरण में हम सब पहुंचे हैं तो हमने जो 84 जन्मों में या 63 जन्म कहें देहमान के कारण द्वापर युग से जो आत्माओं के साथ किसी न किसी विकार के अधीन होकर के हिसाब किताब बनाए हैं, कुछ तो चुक तू कर लिया उसी जन्म में लेकिन कुछ रह गए हैं, और ये अंतिम समय वापस घर जाने का समय है, तो बाबा कहते हैं वो सब रहे हुए हिसाब आपके सामने आएंगे, और वो जब सामने आएंगे तो उसको कैसे आप सामना करेंगे, कैसे ज्ञान युक्त होकर के पार कर लेंगे, हलचल में नहीं आएंगे, ऐसे नहीं मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी, ये तो ऐसा अच्छा योगी, इसके सामने ये क्यों पेपर आ गया, तीन चार दिन पहले मम्मा की मुरली सुनी होगी, इसी पर सारी चली है कि हर प्रकार का पेपर, दोस्त भी दुश्मन बन जाएंगे, आपस में टकराव पैदा होने लगेंगे, जिनके प्रति बहुत भावनाएं रही वो भावनाएं टूटने लगेंगी, लेकिन तुम बाबा का हाथ नहीं छोड़ना, ये कोई ना कोई पुराना हिसाब किताब आया, कोई कारण बना इसलिए ऐसी बातें आई, कोई बात नहीं, बाबा मेरे साथ है संगम पर, उनकी शक्ति से हम उसको सहज पार कर लें। तो ये सब ज्ञान हर आत्मा को बाबा ने इतना स्पष्ट दिया है, इतना विस्तार से दिया है, अगर वो ज्ञान का मनन करता है, चिंतन करता है, तो उसकी बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है, हलचल नहीं होती, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है मुझे हलचल में नहीं आना। तो जब प्रश्नों से पार एकदम प्रसन्न चित्त स्थिति है, खुशनुमा स्थिति है, एकाग्र स्थिति है, तो वो एकाग्रता ज्ञान की लाइट भी फेंकती है, योग की लाइट भी फेंकती है, वो लाइट हाउस है। तो हम सब बाबा के बच्चों को समय प्रमाण लाइट हाउस और माइट हाउस बनना है। योग में भी इतनी स्थिरता हो, अगर हम आधा घंटे योग में बैठ जाएं, तो देखना चाहिए कितना समय उस स्टेज का हमने अनुभव किया कि बाबा की वो लाइट हम ले रहे हैं और बाबा की लाइट चारों पर फैला रहे हैं। पूरे विश्व के ग्लोब को अभी वर्तमान समय, बहुत समय से बाबा का ये इशारा रहा है कि ऐसा समय आएगा जो आपकी वाचा सेवाएं बंद हो जाएंगी। आपको केवल मनसा द्वारा सबको सकाश देनी है, सबको सर्च लाइट देनी है, संदेश देना है, समीप लाना है, आकर्षित करना है। अब उसके लिए ये पावरफुल याद की स्थिति चाहिए। केवल बैठ करके नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन चलते फिरते। बाबा कई बार कहते हैं आप बच्चों की ये जीवन योगी जीवन है, योगी जीवन है, योग लगाने वाले नहीं हैं। हम एक घंटा योग लगा रहे हैं, दो घंटा लगा रहे हैं। आज बाबा कह रहे थे बच्चे मेरे लिए आठ घंटा तो दे दो। साकार में बाबा आठ घंटे तक बच्चों को लाने का बहुत प्रयास करते थे कि आठ घंटा तो कम से कम बाबा के लिए निकालें। लेकिन अव्यक्त बाबा ने इस बात को बहुत अंडरलाइन कराया कि क्या दो चार आठ घंटा बाबा को याद करते हो और बाकी कहाँ याद करते हो, बाकी किसको याद करते हो। जब बाबा ही सर्व संबंधी है तो क्या सहज निरंतर बाबा की याद नहीं रह सकती है। लेकिन उसके लिए बहुत दिल का प्यार चाहिए, सच्चा संबंध चाहिए, एक व्रतता स्थिति चाहिए। मेरा तो एक दूसरा न कोई, कोई भी आत्मा कितनी भी गुणवान हो, रूपवान हो, धनवान हो, स्नेही हो, सहयोगी हो, लेकिन मुझ आत्मा को आकर्षित न करे, एक की आकर्षण में रहे। मेरा तो एक दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति लाइट हाउस अपने आप बन जाएगी, जिसमें बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। हमारी दादियों ने ऐसी स्थिति बनाई जो चलते फिरते लाइट हाउस की तरह थी। किसी स्थान पर प्रवेश कर जाएं, आज हमारी गुलजार दादी दादियां जब बाबा को आह्वान करती थी, स्टेज पर आते ही 20-25 हजार की सभा एकदम शांत सन्नाटा हो जाता। वो लाइट हाउस की स्थिति है। अब लाइट हाउस कोई ऐसा थोड़ी बन के खड़े हो गए आकर के, लेकिन उनके संकल्प इतने पवित्र हैं, शुद्ध हैं, शुभ भावना वाले हैं। ये सब बाबा के बच्चे हैं, इन सबको कुछ न कुछ भगवान से प्राप्ति होगी। बहुत दिल का प्यार है परिवार से, तो उनकी वो स्थिति लाइट हाउस का काम करते। हर एक को ऐसे अनुभव होता है, कोई योगी आत्मा प्रवेश करे आ जाए तो पूरी सभा के अंदर सन्नाटा हो जाता है, सबको अच्छे अनुभव होने लगते हैं, शांति के, शक्ति के, पवित्रता के, अपनेपन के। ये स्थिति लाइट हाउस की स्थिति, और उसके लिए हम सबको केवल ध्यान देना है। जहां जहां भी मन और बुद्धि भटकती है, खींचती है, आकर्षण है, फंसी हुई है, बंधी हुई है, ज्ञान और योग की कैंची से उसको काट दो। लेकिन उसके लिए क्या कहें, महसूसता की शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए। कहते ये तो सब चलता है, सब करते, सबके साथ ऐसे होता है, तो बंधन कटेगा नहीं। जब आप याद में बैठते हो, आप थोड़ा सा साक्षी होकर के अपने ही संकल्पों की गति पर ध्यान दो, रोको नहीं, मारो नहीं, इधर जा रहा है तो मैं बैठा हूं बाबा की याद में, मेरा बुद्धि योग है, मैं बुद्धि से बाबा को याद कर रहा हूं, उस दृश्य को इमर्ज कर रहा हूं कि बाबा एक चैतन्य लाइट है, वो परम धाम घर में रहता है, वो मेरा अपना निजी घर है, मैं उस घर के अंदर शांति का, उस पवित्रता का अनुभव कर रहा हूं। अब एक मिनट भी नहीं रहा, दूसरी तरफ मन इधर चला गया, इधर चला गया। उस संकल्प को चेक तो करो कम से कम, क्यों जा रहा है, किधर जा रहा है, उसे बात करो। अभी एक घंटे का समय है, दो घंटे का समय है, योग करने का है, और तुम किधर जा रहा है, क्या तुमको चाहिए? अब ब्रह्मा बाबा ने जो तपस्या की है शुरू से लेकर के, कहते हैं शिव बाबा जब प्रवेश हुए उसके पहले भक्ति काल में भी ब्रह्मा बाबा का इस बात पर बहुत ध्यान था, मैं गुरु का ध्यान करने बैठता हूं, मैं भगवान का ध्यान करने बैठता हूं, हे मन तुम किधर भागता है, क्यों भागता है? और बाबा कई बार कहते हैं मैं कभी कभी अपने आप को चमाट मार लेता था, मैं कभी अपने को चुटकी ऐसे काट लेता था, तो क्यों भटक रहा है, क्यों गुरु का ध्यान करने नहीं देता है, क्यों भगवान की याद में नहीं स्थिर होता है, तुमको क्या चाहिए, तुमको सब कुछ तो दे रहा हूं, थोड़ी देर तो मुझे भगवान का ध्यान कर लेते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने शुरू से लेकर के भक्ति काल में भी ऐसी मेहनत की, तपस्या की, और लास्ट दिनों में जब संपन्न बनना था, जब उनके धुन लग गई कि अभी मुझे उसकी दिशा बनना है जो ऊपर बाबा को देखती हो, अव्यक्त वतन में जो बाबा दिखाई देता है, उस फरिश्ते को मैं अपने योग बल से प्राप्त करूं, उस स्थिति को प्राप्त करूं, उसके लिए बाबा ने क्या किया, बहुत एकांत में चले गए, काम नहीं छोड़ा, सेवाएं नहीं छोड़ी, बहुत कुछ चल रहा था उस समय 68 में, ये ट्रेनिंग सेंटर बना रहा था बाबा, बुद्धि में ये रहता था इतने बच्चे आएंगे कहाँ रहेंगे कैसे रहेंगे, इनके लिए टीचर्स चाहिए, टीचर्स को ट्रेनिंग देने वाली बहनों के लिए इंद्रप्रस्थ बनना है, जो टीचर्स में कुमारियां आएंगी उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाना है, बाबा की बहुत प्लानिंग थी साकार में, लेकिन वो सब होते हुए भी बाबा एकदम उपराम न्यारा होता गया, काम चल रहा है और बाबा अपनी उस संपूर्ण स्थिति के लिए प्रयास कर रहा है। गीत बजवाना बंद कर दिया, बच्चे गीत कविता की योग में क्या जरूरत है, कोई बाबा से सवेरे सवेरे आकर के कमरे में गुड मॉर्निंग करते थे, बच्चे अभी सवेरे सवेरे आवाज में आने की क्या जरूरत है। घड़ी थी एक बाबा के कमरे में, वहां हिस्ट्री हॉल के अंदर, उसमें एक चिड़िया आती थी, चूं चूं करती थी, घंटी बजाती थी, बच्ची ये बहुत आवाज करती, इसको बाहर कर दो, ये बच्ची को बाहर कर दो, इतना एकाग्रता का अभ्यास किया तब वो संपन्न संपूर्ण बने, और उनकी एकाग्रता, उनकी वो स्थिरता, वो लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति है। हम सभी भी अभ्यास करते हैं, नंबरवार हैं, लेकिन कई बार मन और बुद्धि एक घंटे में 5 मिनट भी स्थिर नहीं होती। जिसने बहुत कुछ ज्ञान चिंतन किया है, बार बार उस पर अटेंशन जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, चिंतन तो पहले, स्टेप तो पहले उठाओ कि मैं आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं एक प्रकाश का पुंज हूँ, मैं शांति का एक फरिश्ता हूँ, चिंतन करो। और चिंतन करते करते कहते मनन करने से, मनन करते करते वो मगन स्थिति बन जाती, चिंतन बंद हो जाता है, संकल्प शांत हो जाते हैं, अनुभव होने लगता है, तो शांति का अनुभव हो, शक्ति का अनुभव हो, पवित्रता का अनुभव हो, और उस अनुभव में आत्मा ऐसे बैठी रहे, बाबा की शक्तियां आ रही हैं, वो चारों तरफ फैल रही, वो लाइट हाउस की स्थिति है, वही माइट हाउस की स्थिति है। तो आप सभी लाइट हाउस माइट हाउस बन करके वर्तमान समय जो आवश्यकता है वो है प्रकृति को पावन बनाने की। आज प्रकृति इतनी चंचल है, इतनी उछल पुथल कर रही है, कितना लोग परेशान हैं, तंग आ चुके हैं, तंग हो रहे हैं, और बाबा कहते अंत समय में ये प्रकृति के पांचों तत्व एक साथ अटैक करेंगे। अलग अलग अभी करते हैं, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं ज्वालामुखी फट जाता है, कहीं तूफान, हवा का तूफान आ जाता है, आ रहे हैं, शुरू हैं, लेकिन जब सब एक साथ हो जाएगा तो सफाई कर देंगे। लेकिन सफाई करने के साथ साथ जब नई सृष्टि की शुरुआत होगी तो यही प्रकृति के तत्व हम सब की सेवा में हाजिर होंगे। लेकिन किसने हाजिर, किसके सेवा में आएंगे? जिसने संगम पर उनकी सेवा की है, उनको शांति की शक्ति दी है, उनको सहयोग दिया है। तो वर्तमान समय वास्तव में केवल आत्माओं तक नहीं, तीन प्रकार की सेवा जरूरी है। एक, इस वायुमंडल में बहुत सी आत्माओं को शरीर नहीं मिला है, भटक रही हैं, और भटकती हैं तो दूसरों को भटका देती हैं, परेशान करती हैं, कहीं न कहीं प्रवेश कर जाती हैं, उनको भी शक्ति चाहिए, शांति चाहिए। दूसरा, जो शरीर के अंदर हैं और विकारों के इतने गुलाम हो गई हैं, इतना अधीन हो गई हैं, जो कई प्रकार के पाप कर रही हैं, दुख की भोगना होते हुए भी, कर्मों का ज्ञान होते हुए भी, जो परवश स्थिति में है, अधीन स्थिति में है, उन आत्माओं को भी शक्ति की जरूरत है, मनोबल की जरूरत है। और तीसरा है प्रकृति। प्रकृति के पांचों तत्व जो इस समय उछल रहे हैं, सतयुग और त्रेता में ये सहयोगी थे, दासी इसको कहते थे, यहां तक भी आप सभी थोड़े समय पहले भी, जब इतनी तमो प्रधानता नहीं थी, जिन आत्माओं में भावनाएं थी भगवान के प्रति, बहुत प्यार से कहते थे, हे इंद्र देवता, मेरी खेती सूख रही है, पानी की जरूरत है, तो उनके खेत में बरसात हो जाती थी, समय पर पानी मिल जाता था, भावना की शक्ति थी। हम सब आज देख रहे हैं कितना वो दूषित विचार हैं, कितनी उसकी भावनाएं गलत हैं, व्यर्थ हैं, नेगेटिव हैं, प्रकृति उनको परेशान कर रही है। प्रकृति का दोहन कितना किया, जितनी आबादी बढ़ती गई उतने कारखाने बढ़ते गए, उसका नदियां दूषित हो गई, धरती माँ दूषित हो गई, प्रकृति के पांचों तत्वों को हम सब ने बिगाड़ दिया। बिगाड़ा है तो सुधारेगा कौन, आत्मा ने बिगाड़ा, खुद बिगड़ी, दूसरों को बिगाड़ दिया। आत्मा जितनी सुधरती जाती है, जितनी प्योर होती जाती है, शुद्ध होती जाती है, पहले ये प्रकृति उसके कंट्रोल में आ जाती है। शरीर भी प्रकृति का है, और साथ साथ उसकी जो नेचर प्रकृति है, कहते मेरी नेचर, मेरी आदत है, स्वभाव है, वो उसके कंट्रोल में आ जाता है, तब ये बाह्य प्रकृति उसको मदद करती, तब उसका कहना मानने की। क्या हम सभी ऐसे प्रकृति जीत बन करके, पहले तो हमें कर्मेंद्रिय जीत बनना है, कहीं ना कहीं आत्मा कर्मेंद्रियों के इतने अधीन है कि चाहता नहीं था, देख लिया, बोल दिया, सुन लिया, कर लिया, हो गया, और करने के बाद पश्चाताप, परेशान, दुखी। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले तो आत्मा मालिक स्वराज्य अधिकारी बने, अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करे, जब वो कर्म इंद्रियों पर जीत पाएगी तो माया विकारों पर जीत होने लगेगी उसकी, और जब माया पर जीत होगी तो नेचुरल है वो विकर्मों पर जीत हो जाएगी। कर्म इंद्रिय जीत, माया जीत, फिर विकर्म नहीं होंगे, विक्रमा जीत, और उसके बाद ये प्रकृति पर जीत हो जाए। कोई भी प्रकृति का तत्व या कोई भी हमारी प्रकृति की नेचर या प्रकृति का शरीर के ऑर्गन्स मुझ आत्मा को अपनी ऊंची स्थिति से नीचे न गिराए, उसके लिए आत्मा मालिक है, उस स्वरूप का अभ्यास करो, चलते फिरते उठते। मैं आत्मा मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाली हूँ, ये मेरी कर्मेंद्रियाँ अलग हैं। तो जितनी हमारी स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनती है, जितना ज्ञान स्वरूप स्थिति बनती है, भगवान कहते हैं, ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, योगी तू आत्मा प्रिय, ऐसा नहीं कहा, ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, माना जिसने ज्ञान को स्वरूप में लाया है। ज्ञान स्वरूप आत्मा कभी परवश स्थिति में नहीं रहती, कभी भी पश्चाताप उसे नहीं करना पड़ता, करने के बाद सोचना, माना कहेंगे तो अज्ञानी है, करने के बाद सोचता है, पाप हो गया, भूल हो गई, गलती कर बैठा, और फिर वो रोता रहे, पश्चाताप करता रहे, सजा तो भोगनी पड़ेगी, वो तो नूंद गई। इसलिए बाबा कहते, ज्ञानी, ज्ञानी माना ज्ञान स्वरूप आत्मा कभी भी किसी भी इंद्रिय के अधीन होकर के परवश होकर के गलत काम नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं ज्ञानी वो है जो सोचता है, समझता है, अपने से विचार करता है, फिर कर्म में आता है, एक सेकंड लगता है। और उसको मदद करने के लिए उसके साथ विवेक है, विवेक बुद्धि जिसको कहते हैं, विवेक उसको साथ देता है कि नहीं ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये करो या नहीं करो। लेकिन वर्तमान समय लोग क्या कर रहे हैं, विवेक की सुनते ही नहीं, उसको दबा देते हैं, बोलने दो चल सब कर रहे हैं करने दो। विवेक को इतना अधीन कर दिया है उसकी सुनता ही नहीं कोई, और फिर संकल्पों के अधीन होकर के, संस्कारों के अधीन होकर के कोई न कोई गलत काम कर लेता है। और गलत कर लिया तो उसका पश्चाताप तो जरूर करना पड़ेगा। कर्मों का बीज तो अनादि अविनाशी है, बीज बो दिया है तो कुछ न कुछ वो बीज भले खत्म हो जाए लेकिन ये बीज कर्मों का खत्म नहीं होता। इसलिए इस समय हम सबको ज्ञान स्वरूप स्थिति पहले बना करके लाइट हाउस बनने की जरूरत है। जितना हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है, जितनी परवश स्थिति से हम ऊपर उठ जाते हैं उतनी हमारी स्थिति लाइट हाउस की तरह दूसरी आत्माओं को भी इन संस्कारों से छुड़ाने में मदद करती है। तो हमारे शुभ संकल्प, हमारी शुभ भावनाएं, हमारे अच्छे विचारधाराएं, और अच्छे विचारधाराओं का एक सुंदर आभा मंडल बनता है, ओरा जिसको कहते हैं। जो आत्मा बहुत समय तक अच्छे विचारों में रमण करती है वो लाइट के एक बहुत सुंदर शरीर के बीच में रहती है। चेहरे को देखो, उसके चलने को देखो, कोई चीज का उसके चेहरे पर तनाव नहीं है, कोई ऐसा चिन्ह नहीं दिखाई देता, बिल्कुल हल्की है, लाइट है। तो उस लाइट हाउस की स्थिति बनाने के लिए हम सबको बहुत शुद्ध पवित्र विचारों में पहले रहने की आदत डाली। इसीलिए बाबा की मुरलियां चलती हैं, इसीलिए इतने हम सब वरदान सुनते हैं, स्लोगन सुनते हैं, कितनी प्रकार की बाबा के घर से खजाना आता है। मनन करो, चिंतन करो, उसमें रमण करो, आपके विचारधाराएं पवित्र हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी, और जहां पर वो परवश स्थिति आएगी वो ज्ञानी तु आत्मा वहां उसको रोक लेगी, कंट्रोल हो जाए, विवेक उसका साथ देगा। और जब ऐसी स्थिति होगी तो योग तो सहज लग जाएगा। योग नहीं लगता उसका कारण क्या है, कुछ न कुछ सूक्ष्म अवज्ञाएं हो जाती हैं। योग के लिए चार बातें मैं हमेशा कहता हूं। एक तो पहला हल्कापन चाहिए, हल्का। कोई भी बोझ अगर आपके ऊपर, मान लो आज आप मधुबन की भट्टी में आए हैं, यहां पर भी अगर बोझ है सिर के ऊपर तो उस योग का रस नहीं मिलेगा। बार बार वो याद आएगा, ये जवाबदारी है, ये बिजनेस है, ये करना है, इसका हमने पैसा लिया है, वो बार बार फोन कर रहा है, वो तंग कर रहा है, उसके साथ हमने गलत काम किया है, उसको हमने ठग लिया है, कुछ भी है, किसी भी प्रकार की विकर्मों का आत्मा के ऊपर अगर बोझ है, जवाबदारियों का अगर बोझ है, अवज्ञाओं का अगर बोझ है, तो योग नहीं लगेगा। इसलिए सब प्रकार के बोझ पहले ही आते ही बाबा को सामने लाओ, बाबा को बहुत प्यार से कहो, बाबा आप तो संगम पर बोझ उठाने के लिए आए हो ना, ये बोझ मैं आपको दे देता हूं। दिया सबने, नहीं दिया हो तो दे देना। बाबा कमरे में जाना, एक पेन लेना, कागज लेना, और जो भी अंदर अंदर आए कि ये बोझ है, ये जवाबदारी है, इस प्रकार की अवज्ञाएं हो रही हैं, एक कागज पर लिखो, बहुत सच्चे दिल से लिखो, और बाबा के कमरे में जो पत्रों का बाक्स है उसमें डाल दो, कोई पढ़ेगा नहीं उसको। हम भले हम लोग खोलते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी का पढ़ते नहीं, पढ़ेंगे तो अपनी बुद्धि खराब करेंगे, किसी का किचड़ा हम क्यों लेंगे, उसको आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन बाबा तो पढ़ लेता है ना, बाबा तो जानता है कि सच्चाई कितनी है बच्चे के अंदर, फिर वो शक्ति देता है। तो पहले बोझ हल्के करो, और बोझ के बाद अंदर की आंतरिक खुशी इमर्ज हो कि मैं किससे मिलने आया हूं, कौन मेरा बाबा है, किससे मैं बातें करता हूं, किसके साथ मेरा संबंध है, किससे मेरा योग है, वो सुप्रीम शक्ति कौन है, वो अलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है, उसकी मैं संतान हूँ, उससे मेरा संबंध है। आंतरिक नशा और खुशी बहुत सहज आपको उड़ा के ले जाएगा। जरा भी उदासी है, जरा भी कोई हलचल है, थकावट है शरीर की भी, तो योग नहीं लगेगा। वो खुशनुमा स्थिति चाहिए, चेहरा वो मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल हल्का लाइट, बाबा के स्नेह में खोया हुआ, योग लगा देगा, योग लग जाएगा। तो पहले चाहिए हल्कापन, फिर चाहिए नशा खुशी, और तीसरा चाहिए बाबा से बहुत सच्चा प्यार। मेरा तो दिलवाला बाबा है, वो मिल गया और क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया। कहीं बुद्धि भटकती नहीं, ये बड़ा वो बड़ा, ये भगवान वो भगवान, सबको हमने पहचान लिया, मेरा तो एक शिव बाबा। सच्चे दिल का प्यार बहुत सहज योगी, सुतय योगी बना देता है। और चौथी बात ध्यान पर रखना, वो है हमारी संगठन में बड़ों की, परिवार की दुआएं, बाबा की भी दुआएं उस बच्चे को मिलती हैं जो सदा श्रीमत पर चलते हैं, जो आज्ञाकारी हैं, जो सपूत हैं, उनको बहुत दुआएं मिलती हैं। और अगर बड़ों की, बाबा की, परिवार की, सबकी दुआएं मिल रही हैं, तो अंदर अंदर आत्मा बिल्कुल खुशी में नाचने लगती है। कोई भी प्रकार की परिस्थिति आए, पेपर आए, शरीर का आए, संस्कारों का आए, संबंधों का आए, धन का आए, दुआएं पार हो जाएंगे, हलचल में नहीं आएंगे। पेपर तो आएंगे, सबके आगे आते हैं, कौन छूटता है। सबने कुछ न कुछ किए हैं कर्म, जो ऐसे कर्म विकर्म बने हैं, पाप कर्म बने हैं, अब ऐसे समय में भोगना आती है। लेकिन वो सूली कांटा जैसी हो जाए, उसकी दुख की महसूसता न रहे, बात आई है और ऐसे आई जैसे पानी पर लगी, पत्थर पर लगी नहीं, पानी पर आई, ऐसे चली गई। तो हम सब किसी भी पेपर में हलचल में आने की बजाय बाबा का साथ लें, उनकी शक्तियों का अनुभव करें और एकाग्रचित होकर के योग करें, तो ये योग लाइट हाउस और माइट हाउस बन जाएगा। एक स्थान पर बैठे हुए हम पूरे ग्लोब को सर्च लाइट दे सकेंगे। प्रकृति की सेवा करें, आत्माओं को मदद करें, और जो भटकती हुई आत्माएं हैं उनको मुक्ति का दान दें, मुक्त हो जाएं, दुखों से मुक्त हो जाएं, भटकने से मुक्त हो जाएं, अपना जन्म प्राप्त करें, या भी बाबा इनको जल्दी अपने घर बुलाए। इसलिए हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है, साधारण नहीं है। हम ब्राह्मण आत्माएं, बहुत ऊंचा सम्मान है, इतनी बड़े विश्व परिवर्तन की सेवा, उसकी जवाबदारी भगवान ने अपने बच्चों पर सौंपी है। तो हम सब साधारण बातों में, तेरे मेरे में, बहुत सारी उलझनों में, बहुत सारी बातों में फंसे नहीं, करो सब कुछ लेकिन न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रख करके। ऐसे न्यारे नहीं बनो जो लोग कहें पता नहीं छोड़ देगा सब कुछ, प्रवृत्ति छोड़ देगा, घर छोड़ देगा। कई ऐसे न्यारे बन जाते हैं जो प्रवृत्ति का ही ध्यान नहीं देते, और कई इतने प्यारे बन जाते हैं जो सारा दिन गृहस्थी में फंसे रहते हैं। इसलिए बाबा ने हमें बैलेंस सिखाया है, न्यारे और प्यारे का बैलेंस है, व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस है, स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस है, कर्म और योग का बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो सबकी ब्लेसिंग्स, सबकी दुआएं मिलती हैं, और सबकी दुआएं मिलती हैं तो बड़ी आनंदमय ब्लेसफुल जीवन बन जाती है। और जब आनंदमय जीवन है तो योग कितना शक्तिशाली होगा आप समझ सकते हो। अपने आप वो योग ऐसा रहता है जैसे बस माइट तरह, शक्ति की तरह चारों तरफ से शक्तियां फैल रही हैं। आप बैठे के स्थान पर हैं, लोगों को कितनी दूर दूर तक ये शक्ति और सकाश जा रही है। अगर 25-50 योगी जो थोड़ा सा इन सब व्यर्थ बातों से मुक्त रहते हैं, संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प में बैठ जाएं। एक बार बाबा ने कहा था अगर हमारे बच्चे ब्राह्मण संगठन एक मत हो जाए और एक शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाए तो उसी समय इस पुरानी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी शक्ति है। परिवर्तन हो जाएगा। नहीं हो रहा है क्योंकि सभी अभी उस माइट हाउस की स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं। युद्ध करते हैं, कभी इधर भटक जाते हैं, कभी उधर भटक जाते हैं, इसलिए सब अभी अभ्यास करो। बाबा के घर में आए हो, कम से कम 3 दिन ऐसी तपस्या करो, बस मन और बुद्धि स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, और बाबा की वो किरणें ऐसे आए फैलने लगे, आपके चेहरे से, आपकी दृष्टि से अनेक आत्माएं नजर से निहाल हो जाएंगे। कुछ नहीं बोलो आप। हमारी दादियों ने लास्ट में कुछ नहीं बोला, बोलना ही बंद कर दिया, लेकिन उनके पवित्र वाइब्रेशन, उनका मुस्कराता हुआ चेहरा, उनकी दृष्टि, कितनी आत्माओं का कल्याण करके गई, कितनी आत्माएं उनकी तरफ चुंबक की तरह खिंच के आती थी। मुझे याद आता है कि यहाँ पर उस समय परदादी सुना है नाम, हमारी निर्मल शांता दादी को हम सभी परदादी कहते हैं, दादियों की भी दादी। तो लास्ट दिनों में वो यहाँ पर इंद्रप्रस्थ में रहती थी, और उनको व्हील चेयर से जब यहाँ पर बिठा देते थे, ले आते थे, कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ मुस्कराती थी, और उनका बाबा जैसा फेस, उनको देखने के लिए, उनकी दृष्टि लेने के लिए लोग चारों तरफ से घेर लेते थे। वो चुंबक बन गई थी, केवल योगयुक्त स्थिति, चेहरा ही उनका लाइट हाउस का काम करता था, माइट हाउस का काम करता, मुस्करा रही है, देख रही है, दृष्टि दे रही है और कुछ नहीं बोल रही है। तो हम सब बाबा के बच्चों को अभी आवाज से परे की दुनिया में जाने का अभ्यास करना। आवाज में आने की तो बहुत समय की आदत बनी है, 3 दिन के लिए भी मौन कहीं नहीं रख पाते, कितना भी समझा जाता है भाई मन का, मुख का, मोबाइल का मौन कर लो, योग करना है तो, लेकिन फिर भी आदत खींच लेती है। तो हम सभी कुछ समय, कम से कम अधिक नहीं, 1 घंटा मन का मौन रख करके देखो। मन का मौन माना इसमें जो संकल्प इधर उधर के आ रहे हैं उनको ब्रेक दो। संकल्प तो चलेंगे, संकल्प के बिना तो मन रह ही नहीं सकता। कल्प का नाम ही शायद संकल्प के आधार से बना है। संकल्प चलेंगे, लेकिन वही संकल्प चले, मैं मेरा बाबा, शांत शुद्ध पवित्र संकल्प चले, बाबा को देखूं, बाबा की तरफ से बातें करूं, उनसे शक्ति लूं, उनसे सकाश लूं, वही संकल्प चले। ये मन व्यर्थ के बातों से, व्यर्थ चिंतन से मन की जो भीड़ है वो शांत हो जाए। ट्रैफिक किसकी है? बाहर तो गाड़ियों की ट्रैफिक है, लोगों की ट्रैफिक है, उसको कितना कंट्रोल करने के लिए सिग्नल देने पड़ते हैं, लेकिन अंदर जो संकल्पों की भीड़ है उसके लिए कोई सिग्नल ही नहीं है। चल रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, फिर सोचते सोचते दिमाग भारी हो जाता, कहता बहुत तनाव हो गया, नींद नहीं आती, कितनी बीमारियां पैदा हो जाती। बाबा हम बच्चों को सिग्नल देता है, बच्चे 1 सेकंड में स्टॉप करो, स्टॉप करो, फिर स्टार्ट करो, ऐसे नहीं खड़े हो जाओ, व्यर्थ को स्टॉप कर दो और फिर ले जाओ अपने संकल्पों को। चल मुझे अभी बाबा के पास का अनुभव करा, मुझे उस शांति धाम का अनुभव करना है, मुझे उस अव्यक्त लोक का अनुभव करना है जहां अभी इतने समय से ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ रह रहे हैं। क्या मैं वो अनुभव नहीं करूंगा? मेरा बाबा वहां रहता है, इतनी सेवाएं कर रहा है 54 साल से लेकर के अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा अव्यक्त रूप में पालना दे रहे हैं, वो मेरा अपना घर है, अव्यक्त लोक है, मैं बुद्धि बल से उस घर का अनुभव करूं, उस परमधाम घर का अनुभव करूं। जब उस अनुभव में खो जाओगे तो वो एक शक्तिशाली याद, जिसको आप ज्वालामुखी योग करो, बीज रूप स्टेज कहो, लाइट माइट हाउस स्थिति कहो, वही याद जो है वो परिवर्तन करती है, वो सेवा करती है। तो अभी हम 1/2 घंटे योग करेंगे, ठीक है, उसी स्थिति में बैठेंगे। तो सब अपने विधि को नहीं भूलना, भ्रकुटी आसन पर बैठो, चमकते हुए लाइट माइट स्वरूप को देखो, मैं एक ऐसा सूक्ष्म हीरा हूं चमकता हुआ इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं, और ज्ञान सूर्य बाबा की ओर किरणें, पवित्रता की उसमें सब कुछ समाया हुआ है, वो बहुत पवित्र स्वच्छ सफेद किरणें यहाँ पर आ रही हैं, और हीरे के अंदर जो सातों रंग की किरणें हैं, सातों गुण आत्मा में समाए हुए हैं, वो सब गुण शक्तियों के रूप में चारों तरफ फैल रहे हैं। तो पहला अभ्यास ऐसा हम करेंगे, फिर कुछ समय के बाद इसको चेंज करेंगे। तो 5-7 मिनट सब इसी स्थिति में बैठ जाओ, बहुत अलर्ट हो करके। नमाज शाम का समय है, फरिश्ते देवताएं चक्कर पर निकलते हैं, हम सभी भी फरिश्ते की ड्रेस पहनेंगे, फिर चक्कर लगाएंगे, लेकिन पहले हम अपने स्वधर्म में स्वस्वरूप में स्थित होकर के बाबा की सब किरणों को मन और बुद्धि के कांच पर एकाग्र कर लें। अपने मन रूपी मंदिर में सर्वशक्तिमान परम पवित्र शिव बाबा को भ्रकुटी आसन पर बुलाओ। बड़े सच्चे दिल से कहो, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, ये बहुत पवित्र आसन, यहाँ पर आप मेरे साथ अपनी सर्वशक्तियों सहित विराजमान होकर मुझ आत्मा को अपने समान बना लो। बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो। वो परम ज्योति सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ मुझ आत्मा का सच्चा पिता मेरे साथ कंबाइंड है। मैं उनके समान लाइट माइट से संपन्न सर्वशक्तियों से संपन्न एक समर्थ आत्मा अनुभव करो। मैं बाबा के समान लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा चारों तरफ ज्ञान और योग का प्रकाश फैलाने की सेवा कर रही हूँ। मुझे आत्मा की पवित्र वाइब्रेशन बाबा की सर्व शक्तियों को धारण कर सर्वात्माओं की प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। प्रकृति के पांचों तत्व पावन बन रहे हैं। मनुष्य आत्माएं सहारे दाता का अनुभव कर रही है। मैं प्रकाश पुंज, एक लाइट माइट का गोला, पूरे ग्लोब को सर्च लाइट दे रहा हूं। सभी अपने चारों ओर एक प्रकाश का आभा मंडल अनुभव करो। मैं आत्मा लाइट और माइट से संपन्न एक चैतन्य शक्ति अपने लाइट के शरीर में प्रवेश कर इस पांच तत्वों की दुनिया से दूर उस फरिश्तों की दुनिया में अव्यक्त लोक में बाप दादा के सन्मुख फरिश्ते की किरणों से संपन्न बन रही हूं। बाप दादा मुझे नजर से निहाल कर रहे हैं। सर्वशक्तियों का वरदान दे रहे हैं। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। मैं अपने फरिश्ते स्वरूप से उस लाइट की ऊंची चोटी से इस पूरे ग्लोब को लाइट दे रहा हूं। ये लाइट माइट की किरणें मुझ लाइट हाउस से चारों ओर फैल रही हैं। अज्ञानता का अंधकार दूर हो रहा है। इस सृष्टि का सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। तमोगुण समाप्त हो रहा है। फरिश्तों की दुनिया से भी दूर एक सुनहरे लाल प्रकाश के बीच जहां हम सबके अति प्रिय सर्व के कल्याणकारी सर्वशक्तिवान शिव बाबा ज्ञान सूर्य के रूप में चमक रहे हैं। मैं आत्मा अपने निराकारी स्वरूप में उस निराकारी वतन का अनुभव कर रही हूं। ये परमधाम घर मुझ आत्मा का अपना निजी घर है। ये शांति धाम मुक्ति धाम परम पवित्र धाम है। मैं आत्मा अपने ही घर की सर्व शक्तियों से संपन्न बन रही हूं। उस ज्ञान सूर्य बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझे संपन्न बना रही हैं। सभी उस प्रभु प्यार में, उस परम ज्योति में समाने का अनुभव करो। असीम शांति का अनुभव करो। शक्ति का अनुभव करो। इस शक्तिशाली ज्वालामुखी योग का अनुभव करके मैं आत्मा अपने इस साकारी दुनिया में, इस कर्म क्षेत्र पर श्रेष्ठ पार्ट बजाने के लिए इस शरीर में अवतरित हुई हूं। ये मुझ आत्मा का माध्यम है। मैं इसकी मालिक हूं। अनुभव करो कि मैं इससे अलग हूं। मैंने इसमें प्रवेश किया है। मैं एक चैतन्य लाइट हूं, माइट हूं, प्रकाश पुंज हूं।
अवश्य ही सभी ने बहुत अच्छी योग की अनुभूति की होगी और विषय भी बहुत स्पष्ट हुआ होगा। भ्राता जी खास आपके बीच आए अपना अमूल्य समय निकालकर और ज्ञान गंगा में स्नान करने का आपको अवसर मिला। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।